ஓம் சாந்தி. கல் ஹம் சபி நே ஹம் சபி கே பிராண் மீதே வக்த் பாப் தாதா சே முலாகாத் கி. வோ தேகா பாபா கேசே பியார் கா சாகர் ஹை. தோ பாபா ஆஜ் டாபிக ஃபிர் யஹி ரக்கா கி கேசே ஹம் ஐசே பாப் கே சமான் பன் ஜாயே ஔர் பாப் கோ பிரத்யக்ஷ் கரே. तो आज का टॉपिक है रियलिटी से पर्सनैलिटी और रॉयल्टी. तो रियलिटी माना सत्यता, ट्रूथफुलनेस. अगर दिल में सत्यता है, कौन से इस दिल में नहीं, आत्मा का दिल, कॉन्शियसनेस, जिसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसे कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, अगर आत्मा के दिल में सत्यता है अर्थात रियलिटी है, तो चेहरा, ये जो हमारा चेहरा है, चेहरा अर्थात मन, बाबा कहता चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करो. तो चेहरे का मतलब ये फिजिकल चेहरा जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, जो मन में होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है. तो हमारे चेहरे में पर्सनैलिटी दिखाई देगी, चेहरे हमेशा पर्सनैलिटी चेहरे से दिखाई देती है, और चेहरे से पर्सनैलिटी और चलन, चेहरा और चलन, चेहरे से और चेहरे, चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है. तो चलन माना कर्म, कर्म में रॉयल्टी आ जाएगी. जैसे देवता होते हैं ना, देवताओं के हर कर्म में रॉयल्टी होती है. बाप, ब्रह्मा बाप हमारे जब थे, उनके हर कर्म में रॉयल्टी थी, उनका चेहरा, चेहरे से पर्सनैलिटी दिखाई देती थी. तो आज हम इसी बात को बहुत गहराई से लेंगे, कैसे हमारे दिल में अगर सत्यता आ जाए, दिल में हम सत्यता, रियलिटी को भर ले, तो हमारा चेहरा क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी वाला, सबसे ऊंचे से ऊंचे पर्सनैलिटी वाला हो जाएगा, और हमारी चलन अर्थात हमारे कर्म रॉयल्टी से भरपूर हो जाएंगे, और उससे हमारा बाप प्रत्यक्ष होगा. हम सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, स्वयं बाप समान बन जाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे. इसी बात को हम गहराई से लेते हुए, ये हमारे हेल्थ से भी रिलेट करेगा, हमारे मन की हेल्थ और तन की हेल्थ से भी रिलेट करेगा, और इसको हम बहुत ही गहराई से समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे कि कैसे हम अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे. रियलिटी के द्वारा पर्सनैलिटी और रॉयल्टी. रियल्टी अर्थात सत्यता, अगर हमारे दिल में सत्यता हो तो हमारे चेहरे से पर्सनैलिटी झलकेगी, रूहानी पर्सनैलिटी बन जाएगी, और चलन में अर्थात कर्म में रॉयल्टी आ जाएगी, जिसके द्वारा हम सारे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे. अब इसकी हम थोड़ा गहराई में समझते हुए चलते हैं. आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. उसमें सबसे पहली बुद्धि है, और बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं. आपको क्लियर हो जाए ताकि आप इस नॉलेज को, बाबा के ज्ञान को सही ढंग से अपने आप को यूज कर सकें, इसलिए मैं थोड़ी सी बात को रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए. बुद्धि के चार एस्पेक्ट होते हैं. सबसे पहले होता दिल, कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस. आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा है, उसे हम देख नहीं सकते, वो एनर्जी है. फिजिकल एनर्जी भी नहीं है, फिजिकल एनर्जी होती है लाइट, फिजिकल एनर्जी है हीट, फिजिकल एनर्जी वो भी दिखाई नहीं देती है, तार में बिजली बहती दिखाई नहीं देती है, किंतु आत्मा तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ जान सकते हैं. और परमात्मा भी ऐसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो सदा कभी क्षीण नहीं होती है. आत्मा की ऊर्जा कम ज्यादा हो जाती है, हम आधा कलप भरपूर रहते हैं और आधा कलप वो एनर्जी कम होके आधी से कम हो जाती है, द्वापर युग आ जाता है, फिर कलयुग आ जाता है. जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है आत्मा की, तो फिर दोबारा रिचार्ज करने के लिए शिव बाबा आते हैं. तो आत्मा जो है, आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मैंने बताया जैसे बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि जो आत्मा से सात एनर्जी, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं निकल रही हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे हाइपोथैलेमस के मध्य में आत्मा स्थित है। और उससे जो पहली एनर्जी निकल रही, सात एनर्जी निकल रही है, जो उसका इंटीमेट एस्पेक्ट है, उसको हम दिल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, या अंतरात्मा कहते हैं। और आत्मा सतो प्रधान है, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है तो वो दिल हमारी सच्ची है, सच्ची दिल है, सच्ची दिल, साफ दिल कहते हैं। जिस दिल में सिर्फ आत्मा है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और मेरे सरल संबंध उसके साथ है, और संसार एक नाटक है, अर्थात कर्म, कर्म सत्य है, चार ही सत्य है। जब सत्यता की बात करते हैं, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सत्य की परिभाषा में दो बातें आती हैं। सत्य एक तो कभी बदलता नहीं है, सत्य सदा एक जैसा रहता है। दूसरा, सत्य कभी मरता नहीं है, एटर्नल है सत्य। जैसे आत्मा सदा एटर्नल है, कभी मरती नहीं। दूसरा, आत्मा शरीर में आई थी तो भी इतनी छोटी सी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा थी, शरीर के अंदर है तो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है, और शरीर छोड़ के जाएगी तो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा शरीर में आने से पहले भी थी, बाद में भी होगी, और उसकी शेप बदलती नहीं, फॉर्म बदलती नहीं। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भी कभी एटर्नल है, सदा ही है, और सदा ही उसका शेप कैसा है, फॉर्म क्या है उसकी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है। वो परम है, सुप्रीम है, पावर हाउस है सातों गुणों का, कभी उसकी एनर्जी कम नहीं होती, सागर है, इसलिए उसको परम कहते हैं। परम मीन्स सुप्रीम, राइट, परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। तो पहली जो आत्मा से जो सात एनर्जी निकल रही है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियां, उसको दिल कहते हैं। और जितनी ही अधिक ये सातों गुण होते हैं, ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब समझ, सत्य की समझ, ज्ञान का अर्थ क्या है, सत्य की समझ, जिसे मैं कई बार इसको सूक्ष्म रूप में कह देता हूं, ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, अर्थात आत्मा के सरल संबंध परमात्मा बाप से है, और D फॉर ड्रामा, ड्रामा ये संसार रूपी नाटक जिसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करती है, और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जो ABCD है, ये ज्ञान है, मुरली है बाबा की, ये जो है सत्य है, ट्रुथ है, परमात्मा सत्य है, शिव बाबा सत्य है। आज की मुरली में था ना, बाप सत का संग तारे कुसुम बोरे, और सिर्फ बाप का संग ही सत्संग है, बाकी सब झूठ संग है, सिर्फ बाप ही एक सदा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा जो है, जो बाबा है वो सदा सत्य है। तो ये जो है हमारी ये कॉन्शियसनेस में रहता है कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ये सत्य है मेरा, मैं डॉक्टर हूं ये सत्य नहीं है, मैं देह हूं ये सत्य नहीं है, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, सत्य झूठ है, ये रोल है, ये सदा नहीं रहता है, अटर्नल नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, राइट, समझ रहे हैं बात आप, ये बदलने वाला है, कभी भी बदल सकता है। तो सत्य ये है, ये ABCD, ये ज्ञान, बाबा सत्य है, और बाबा का जो बाबा ने ज्ञान, सत्य ज्ञान दिया, ये सत्य है। तो मेरे दिल में ये रहना चाहिए, अगर दिल में ये है तो विवेक, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है बुद्धि का, विवेक है, विवेक माना परखने की शक्ति, मेरी परखने की शक्ति कैसे ईश्वर जैसी हो जाती है। जैसे शिव बाबा का दिल कैसा है, दिल तक, दिल सातों गुणों का सागर है, तो उसका, उसकी उसकी विवेक कैसी है, उसकी विवेक सदा ही परफेक्ट है। अगर ऐसे ही मेरे दिल में अगर ABCD रहे, सदा भरपूर रहे, बाबा मेरे दिल में सदा रहे, जो कल बाबा ने कहा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, यही सदा मेरे दिल में बसा रहे, मेरी कॉन्शियसनेस में बसा रहे, मेरी अंतरात्मा में बसा रहे, तो मेरा विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है। अर्थात मेरी परखने की शक्ति राइट है कि रॉन्ग है, एकदम एक सेकंड से भी कम समय में परख सकते हैं हम कि राइट है कि रॉन्ग है। और जिसकी परखने की शक्ति परफेक्ट है, उसकी बुद्धि, जिसे हम कहते हैं जजमेंट पावर, वो डिवाइन हो जाती है, दिव्य हो जाती है। फिर बुद्धि मेरी डिवाइन हो गई। जब बुद्धि डिवाइन हो गई तो मेरा चित्त सबकॉन्शियस माइंड, मेरा चित्त एकदम शांत एकाग्र और आनंदमय हो जाता है। अर्थात अगर दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है, अर्थात जो दिल में है वो चित्त में है। ठीक है, तो ये बुद्धि के चार एस्पेक्ट कौन कौन से हो गए? दिल कॉन्शियसनेस हिंदी में, दूसरा विवेक, तीसरा बुद्धि प्रॉपर या जजमेंट पावर निर्णय शक्ति, और चौथा चित्त सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर मेरी बुद्धि, इस बुद्धि को कहते हैं सत्व प्रधान बुद्धि, जिस बुद्धि में ज्ञान से भरपूर बुद्धि है, पवित्रता से भरपूर बुद्धि है, शांति से भरपूर बुद्धि है, रूहानी प्रेम से भरपूर बुद्धि है, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर बुद्धि है, आनंद से भरपूर बुद्धि है, और तो ऐसी बुद्धि, ऐसे दिल में अगर छह पावर है तो उसके अंदर परखने की शक्ति ईश्वर जैसी है, और जिसकी ईश्वर जैसी परखने की शक्ति है वो उसकी बुद्धि, उसकी जजमेंट पावर निर्णय शक्ति कैसी है? दिव्य है, डिवाइन है। और जिसकी बुद्धि निर्णय शक्ति डिवाइन है, दिव्य निर्णय शक्ति है, उसका चित्त सदा क्या है? शांत है, एकाग्र है, आनंदमय है। और ये चित्त के आधार पे हमारी मेमोरीज, जो नेक्स्ट पावर है मन, मन में भी चार बातें होती हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। अब मेरा चित्त के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है मेरी कौन सी स्मृतियां जागृत होंगी। बाबा ने बताया ना मुरलियों में कि अभी क्या है, खेल कौन सा है? स्मृति मर्ज और इमर्ज का खेल है। मेरी स्मृतियां अभी कैसी थी? तमो प्रधान स्मृतियां जागृत थी। आज के मनुष्यों की कैसी स्मृतियां जागृत हैं? तमो प्रधान, पांचों विकारों की स्मृतियां जागृत हैं, उनके अंश और वंश की स्मृतियां जागृत हुई हैं। तो ऑटोमेटिक वही ऐसी वृत्ति बन जाती है, फिर वैसी भावना पैदा होती है, और फिर वैसे संकल्प चलते हैं, और उन संकल्पों के आधार पर हमारे बोल बनते हैं, हमारे कर्म बनते हैं। अर्थात हम कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, वैसी बातें, वैसी चीज हम देखते हैं, जैसे संकल्प होते हैं, फिर उस जैसा दिखाई देता, देह दिखाई देती है, देखे संबंध दिखाई देते हैं, देखे स्वभाव संस्कार दिखाई देते हैं, और देखे पदार्थ दिखाई देते हैं। तो अब मुझे अगर इनको बदलना है तो सारी गेम जो है, सारा जो पुरुषार्थ है, वो अपने चित्त को शांत और एकाग्र बनाने का है। और चित्त और शांत, उसका चित्त उसका शांत एकाग्र आनंदमय होगा जिसके दिल में क्या होगा, क्या होगा? बाबा होगा, राइट? जड़ दिल है, राइट? अगर दिल में सत्य होगा, आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से है, खाली कहने की बात नहीं है, एक एक संबंध की गहराई से अनुभूति करना, उस अनुभव में खो जाना, उस अनुभव में हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में उसके साथ की अनुभूति करते रहना, तो उसका चित्त शांत एकाग्र आनंद में होगा। और उसके आधार पर जो स्मृतियां जागृत कौन सी वाली होंगी? अपने संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति जागृत हो जाएगी। जो हमारा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप है उसकी स्मृतियां जागृत होगी, हमारे फरिश्ते स्वरूप की स्मृतियां जागृत होंगी, हमारे देवताई स्वरूप की स्मृतियां जागृत होंगी। फाइलें सब हैं हमारी आत्मा में, जब हम देवता थे उस समय की भी फाइल है, अर्थात मेमोरी की फाइल है हमारे अंदर, जब हम क्षत्रिय थे वो टाइम की भी फाइलें हैं, जब हम द्वापर युग में आए तो वो टाइम की फाइलें भी हैं स्मृति में, और कलयुग के डिफरेंट डिफरेंट विकारों में जब गए वो स्मृति की फाइल भी है। इमर्ज कैसे होंगी? सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे, राइट? तो ये स्मृति, जैसे अब ये जब मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप की फाइलें जागृत हो जाती हैं, स्मृति जागृत हो जाती है, तो क्या होता है? फिर हमारी दृष्टि सबके प्रति रूहानी हो जाती है, आत्मिक हो जाती है, हम सबको रूहानी रूप में, उनका रूहानी रूप देखते हैं, या तो हम संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप में देखते हैं, या तो फरिश्ते स्वरूप में दूसरों को देखते हैं, या फिर देवता, भविष्य में देवता बनने वाले स्वरूप के रूप में देखते हैं, चाहे हमारे चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे ऑफिस में काम करने भले बीके हो चाहे नॉन बीके हो, हम उनको होमनार फरिश्ता से देवता रूप में देखते हैं। और हमारी वृत्ति अर्थात रूहानियत वाली वृत्ति हो जाती है, और फिर हमारी भावना सबके प्रति ऑटोमेटिक, जब हमारी वृत्ति ऐसी हो जाती है रूहानियत वाली, तो हमारे आसपास वायुमंडल जो होता है, जहां भी हम होते हैं, चाहे अपने घर में हो या बाहर पे हो या सेंटर पे हो, हमारा जो वायुमंडल है वो रूहानियत वाला वायुमंडल हो जाता है। और जितना ये स्मृति बढ़ाते जाएंगे हम, जितना दिल में एक एक संबंध को बाप को हम याद करते जाते हैं, जितना हम बाप की याद में टिकते जाते हैं, बाप को एक एक संबंध से एक एक अनुभव को हम करते जाते हैं, बाप के साथ के अनुभव को, या मुरलियों के पॉइंट पर मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, उतना मेरा विवेक ईश्वर जैसा बनता जाता है, उतनी मेरी निर्णय शक्ति दिव्य बनती जाती है, उतना मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होता जाता है, अर्थात मैं सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता हूं। आपने सुना ना, ब्राह्म देवता कैसे होते हैं, शिव बाबा क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप, अर्थात शिव बाबा के दिल में सत्य है तो चित्त उनका सदा आनंद स्वरूप है, देवताओं के दिल में सदा सत्य है उनका चित्त सदा आनंद स्वरूप है। तो ऑटोमेटिक तरीका यही है, सारा पुरुषार्थ यही है, अपने दिल में मेरे दिल में कौन है, मेरे दिल में कौन है। इसलिए बाबा ने लास्ट ईयर आपको याद होगा, बच्चों के दिल में कौन, मेरा बाबा, और बाबा के दिल में कौन, मेरे बच्चे। बाबा की तीन चार मूल्यां बाबा की लास्ट इसी बात पे चली थी, कल भी बाबा इस बात को याद दिला रहे थे हम सबको ना, बच्चों के दिल में कौन है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, है ना, और बाबा के दिल में सदा बच्चे ही रहते हैं। तो ये जितना हम पक्का करते जाएं, तो हमारी जब रूहानी वृत्ति हो जाएगी, रूहानी वायुमंडल होगा, और रूहानी वायुमंडल जब होगा तो भावना, हम सबके प्रति भावना, हमारी सबके प्रति भावना कैसी हो जाएगी, शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, किसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, और शुभ भावना शुभ कामना से वाइब्रेशन पैदा होंगे, और ये वाइब्रेशन चाहे व्यक्ति कितना भी दूर बैठा हो, आज से 1000 किलोमीटर दूर हो, 10,000 किलोमीटर अमेरिका में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, जापान में बैठा हो, हर व्यक्ति को ये भावना टच होगी, वाइब्रेशन टच होंगे, उस तक वाइब्रेशन पहुंचेंगे। जब हम आत्मा के लेवल पे, वाइब्रेशन किसके बीच में होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं, एक माँ और बेटे के बीच में, बेटा चाहे 20,000 किलोमीटर दूर बैठा हो, माँ जो सोचती है बच्चे के बारे में, बच्चे को टच होता है, बच्चा जो सोचता है माँ को टच होता है, वाइब्रेशन, टेलीपैथी भी कहते हैं। किंतु जब अपने को आत्मा के समझ ले, वो तो माँ और बेटे के रूप में कर रहे हैं, हम, मैं आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं पिता की संतान हूं, और हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो संबंध हो गया, नहीं हो गया, तो मेरे जो शुद्ध वाइब्रेशंस, मेरे शुद्ध संकल्प विश्व की हर आत्मा तक पहुंचने लगते हैं, भले वो कुंभकर्ण है, भले वो ज्ञान की नींद में सोए हैं, किंतु उन टच होगा। जितना अधिक समय बीतेगा, जितने जितने साधन कम होते जाएंगे, जो जितने साधन अभी, जैसे साधन अभी तो साधनों में लोग खोए हुए हैं, जैसे ही कुछ धरती हिलेगी, विनाश शुरू होगा, समय सूचना देगा, तो आप देखेंगे वैसे ही लोग, जैसे अभी भूकंप आता है कहीं पर, या एटॉमिक वार शुरू होती है, सुनामी आती है बहुत जोर से जिसमें कई करोड़ लोग मर जाते हैं, तो धरती पूरी ऐसे ही, लोग फील करने लगे अभी सब कुछ भी ऐसा परमानेंट नहीं है, तो लोगों का ध्यान क्या होगा, एकदम वो वाइब्रेशन कैच करना शुरू कर देंगे। जैसे धरती को हम पहले क्या करते हैं, बंजर धरती होती है, बंजर धरती में पानी डालते हैं पहले, उसे नरम करते हैं थोड़ा पानी डाल के, फिर उसके बाद उसमें हल चलाते हैं। तो ये जो अभी अभी हम समझते हैं कि शायद हमारे वाइब्रेशन नहीं पहुंच रहे, हमारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, अभी धरती को नरम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हल चलाया जाता है। हल कभी चलेगा, जब भूकंप आएगा ना, बड़े बड़े तूफान आएंगे, सुनामी आएंगे, तो भूकंप, तो हल चलेगा, है ना, फिर धरती में क्या होगा, फिर वो वाइब्रेशन तेजी से हमारे बीज के रूप में काम करेंगे, और उनको तब वो भागेंगे, तब उनको हमारी प्रत्यक्षता महसूस होगी कि बाबा आया हुआ है, तब उनको ऐसा फील होगा, भले हम होंगे माउंट आबू में, भले हम होंगे दिल्ली में, कहीं भी हम होंगे, तो हमारे फरिश्ते स्वरूप के साक्षात्कार उनको होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जब हमारे अंदर ऐसी वाइब्रेशंस, इसलिए हमारी किसी एक व्यक्ति के प्रति भी हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो, नेगेटिव भावना ना हो, सारे विश्व में हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव भावना हो, और जब ऐसी भावना हमारी हो जाएगी तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली और कल्याणकारी हो जाएंगे। और उन संकल्पों के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना अर्थात हम हमारे पास पास जो आत्माएं भी आसपास भी होंगी और हम भी अपने शरीर के द्वारा शरीर के अंदर शुद्धि प्राशुद्धि करते जाएंगे। जो बाबा ने आज कहा, बाबा क्या करने आते हैं, आत्माओं के मूत पलीती कपड़े कपड़ धोने आते हैं। मूत पलीती कपड़ धोए, आत्मा के कपड़े कौन से हैं? शरीर के कपड़े धोने आते हैं क्या? नहीं, आत्मा के कपड़े कौन से हैं? मन बुद्धि संस्कार। जो मन बुद्धि संस्कार तीन कपड़े हैं आत्मा के, जो मूत पलीती हो गए अर्थात विकारों से सड़ गए हैं, विकारों से भर गए हैं, उनको वापस स्वच्छ बनाने आते हैं, शुद्ध करने आते हैं। तो ये वाले कपड़े हैं हमारे मन बुद्धि और संस्कार। तो ऐसे हमारे बुद्धि भी बदल जाएगी, बुद्धि रूपी कपड़ा साफ हो गया, बुद्धि में बाबा आ गया, मन में स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प भी साफ हो गए। और स्मृति ही हमारे संस्कार हैं, स्मृतियां ही हमारे संस्कार हैं, तो स्मृतियां भी परिवर्तन हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे मन बुद्धि संस्कार तीनों के तीनों परिवर्तन हो जाते हैं और हम क्या बन जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं? तो ये ऐसे अब हमारा मेन, जब मेरे मन बदल गया, मेरी स्मृति में क्या आ गया, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूं, और मेरी वृत्ति ऐसे रूहानियत वाली हो गई, उससे वायुमंडल बन गया, भावनाएं दूर दूर तक, वाइब्रेशन दूर दूर तक, खुशबू जा रही है उस स्वरूप की, ब्राह्मण स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की, देवता स्वरूप की, वाइब्रेशन हजारों किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं और संकल्प सारी सृष्टि पर असर करते हैं, सारी सृष्टि पर उसका असर हो रहा है। तो सारे विश्व में क्या होगा, मेरे चेहरे द्वारा क्या होगी, हम ब्राह्मणों के चेहरे के द्वारा क्या होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो चेहरा, ये चेहरा ये प्रत्यक्ष करेगा, रोम रोम से एनर्जी, सामने कोई भी आएगा, सामने नहीं भी आएगा, दूर तक भी वो अपने आप साक्षात्कार जाएंगे। बाबा ने कहा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं जहां भी आपके भगत होंगे, जहां भी विनाश हो रहा होगा, जहां लोग दबे होंगे, उनको साक्षात्कार होगा आपके फरिश्ते स्वरूप का, आपके उसी को वो इष्ट मान करके, क्योंकि आपके द्वारा उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति होगी, तो आपको ही इष्ट मान के द्वापर से आपकी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो ये है चेहरे द्वारा पर्सनैलिटी, फरिश्ते की पर्सनैलिटी बनेगी, देवता स्वरूप की पर्सनैलिटी बनेगी। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, जब दिल में सत्यता है तो हमारे चेहरे में, मतलब ये जो आत्मा के सात गुण हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां, ये दिखाई देगी, ये आंखें दिखाई देंगी, आंखों से दिखाई देगा ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आग दिखाई देगी, पवित्र स्वरूप पवित्रता चेहरे से दिखाई देगी, शांति चेहरे से दिखाई देगी, हमारे कर्मों में शांति दिखाई देगी, रूहानी प्यार हमारे व्यवहार से दिखाई देगा, और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति हमारा चेहरा दिखाएगा कि ये तो खोए में अतिंद्रिय सुख में आनंद हमारे चेहरे से दिखाई देगा, शक्तियां हमारे चेहरे से दिखाई देंगी। तो इसे कहते हैं पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी। तो दिल में जितनी सत्यता भरते जाएंगे, बाबा को सदा इमर्ज रख, स्मृति को इमर्ज रखेंगे, एबीसीडी को सदा इमर्ज रखेंगे, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को बुद्धि में इमर्ज रखेंगे, उनपे मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, उतना मेरा मन क्या होता जाएगा, सातों गुणों से भरपूर होता जाएगा, और वो मेरे चेहरे से दिखाई, इसी को कहते हैं पर्सनैलिटी। तो रूहानियत की पर्सनैलिटी हमारी विश्वविख्यात होती जाएगी, जगह जगह साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे, के जैसे चारों तरफ फरिश्तों के साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। और फिर चलन, कर्मों द्वारा क्या दिखाई देगा, रॉयल्टी। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर हो जाएगी तो आत्मा सात एनर्जी खूब निकलेंगी, बहुत भरपूर हो जाएगा, शिव बाबा सागर है, ओशियन है, पावर हाउस है, यहां बाबा जैसे मेरे दिल में आके बैठ गया तो क्या होगा, ज्ञान का सागर, पवित्रता का, शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर। तब मैं कोई भी कर्म करूंगा, किसी को भी देखूंगा, कर्म कर्म माना, इन कर्मेंद्रियों से जो कुछ हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथ पैर से कर्म करना, चलना भी कर्म है, ये शरीर द्वारा कुछ भी हम करें वो कर्म है। तो मेरे जैसे ब्रह्मा बाबा के देखना, ब्रह्मा बाबा का पढ़ना, ब्रह्मा बाबा का सुनना, ब्रह्मा बाबा का बोलना, ब्रह्मा बाबा का भोजन करना, ब्रह्मा बाबा का किसी से हाथ मिलाना, ब्रह्मा बाबा जो भी करते थे वो क्या था, रॉयल्टी थी, उसके हर कर्म में रॉयल्टी थी। चलन, बाबा की चलन कैसी थी, जो एक बार मिल लिया कोई भूल नहीं पाता था बाबा को। बाबा सारे विश्व में नहीं गए, बाबा भारत में भी बहुत कम हिस्सों में गए, किंतु आज सारे विश्व की आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता है। अभी तक भी सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ही साक्षात्कार होता है। हम ब्राह्मणों में से शायद ही किसी का, दादियों का, किन्नी दादियों का साक्षात्कार होता है, किंतु अभी भी बाबा का ही साक्षात्कार, बाबा नंबर वन सोल थी। तो अंत में जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करते करते ऐसा पुरुषार्थ करते जाएंगे, इस पुरुषार्थ को बढ़ाते जाएंगे, अपने दिल में एक बाप के सिवाय कोई और नहीं होगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जब ऐसी स्थिति बनाते जाएंगे, एक सत्य बाप का संग रखेंगे, किसी भी देहधारी का संग नहीं रखेंगे, किसी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, इवन कोई भी पदार्थ है दुनिया के, अखबार, टेलीविजन, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, आजकल बुद्धि कहाँ लगी हुई है, कहां पे है बुद्धि, बाबा के बच्चों की बुद्धि कहां रहती है, ज्यादा व्हाट्सएप पे है ना, ग्रुप बनाए हुए हैं उन्हीं में खोए रहते हैं, उसके द्वारा देख, उनके द्वारा क्या है, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले में अंदर खोए रहते हैं, उसने क्या मैसेज भेजा, उसने क्या मैसेज भेजा, उसने क्या मैसेज भेजा, ये पुरुषार्थ नहीं है। कई लोग कहते हैं हम ना, हमें हमारे इसमें ना व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे विचार सागर मंथन आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मनन चिंतन मंथन की बातें आती है। आपका मनन, कई बार मैं अपने आप को कहता हूं, मैं कई भाई बहनों को भी कहता हूं, किसी और का मनन चिंतन किया हुआ आपके काम नहीं आता है। आप खाना खुद चबा के खाते हैं, दूसरों का चबाया हुआ आप खा लेते हैं, क्या करते हैं बताओ, खाना अपने मुंह में, जब खाना खाते हैं तो अपने मुंह में चबा के अपने मुंह में चबा के खाते हैं, दूसरों को चबाया और आप उसे खा के खून बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बताओ, कैसे बनाते हैं, अपने मुंह में चबाते हैं ना। तो आपकी जो मुरली है, बाबा की जो मुरली है, बाबा की वो मुरली जो है उसमें 700 करोड़ आत्माओं के सॉल्यूशंस हैं, हर समस्या का समाधान उस मुरली में है, चार पेज की मुरली में है। जितने भी दुनिया में व्यक्ति हैं, कोई नॉन बीके भी अगर मुरली पढ़ ले, जिसने कभी मुरली ना सुनी हो वो भी पढ़ ले, तो मैं तो इवन देखा है, मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है, कई ऐसे होते हैं जिनको कभी भी, मतलब उन्होंने कभी ना कोर्स किया है ना कुछ भी नहीं किया है, हम ऐसे कई बार कहते हैं ठीक है, मन परेशान है उसका, बहुत पेशेंट होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में दाखिल, हम ऐसे उसको क्या करते हैं, मुरली के चार लाइन सुना देते हैं, ऐसे ही वरदान सुना देते हैं, स्लोगन सुना देते हैं, वो टेंशन में बहुत होते हैं, उनकी समस्या एकदम ठीक हो जाती है। तो बाबा की जो मुरली है उसका हर वाक्य है, महावाक्य बहुत गुह्य है, मतलब उसमें बहुत गहराई है, उसमें बहुत गोपनीयता है, उसमें कई चीजें बहुत सीक्रेट है, मतलब और रहस्य युक्त है, गुह्य, गोपनीय और रहस्य युक्त, और चौथा अमूल्य। तो बाबा की हर लाइन महावाक्य है, और एक महावाक्य का मीनिंग आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है, उनके लिए कुछ और है, इनके लिए कुछ और है, और वो हमको मनन करके, उसके चार स्टेप हैं, पहले श्रवण, सुनो ध्यान से, मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा की गोद में चले जाओ, ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठ के सुनो मुरली को, बाबा की गोद में सुने उसे बहुत ध्यान से, मन बुद्धि इधर कहीं भी ना जाए, पूरे 45 मिनट या एक घंटा बाबा के अलावा सिर्फ बाबा सामने और मैं, बस मैं, लिखते भी रहें, सुनते भी रहें, बस अनुभव भी करते रहें, लिखना, सुनना, लिखना और अनुभव करते जाना। ये एक घंटे का समय हमारा क्लास का समय है, इसमें चेक करना चाहिए कि इसमें एक सेकेंड भी मेरा, मेरी बुद्धि ना इधर जाए, साथ में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा, आगे कौन बैठा है, इसमें खोई बुद्धि होनी चाहिए। हमने मुरली सुनी, सुनने के बाद फिर जैसे हम निकले बाहर वॉकिंग करनी है तो उसको रिवाइज करो, बाबा ने आज कितने पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स बाबा ने बताए, मनन मनन रिवाइज करना, चिंतन मतलब गहराई में जाओ, बाबा आपने कहा मैं तो, मुझे तो ऐसा बनना है, मैं तो ऐसे बनना चाहता हूं, आपने कहा बच्चा बहुत मीठा बनो, कभी कोई बुरा काम नहीं करो, बाबा ने कहा देवताओं समान बनो, बाबा ने कहा सदा खुशी आंतरिक खुशी में रहो, है ना। बाबा ने कहा उत्तम से उत्तम पुरुष बनो, सबको रिगार्ड दो, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। बाबा मैं तो देना चाहता हूं, मैं कैसे करूं, पर सब छोटे को रिगार्ड कैसे दूं, ये व्यक्ति तो मेरे को हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, मैं इसको कैसे रिगार्ड दूं, है ना। तो मुझे करना है, मुझे सबको देना है। बाबा सबको रिगार्ड दो, रिगार्ड रिगार्ड का रिकॉर्ड बनाओ, अर्थात आपका रिकॉर्ड इतना बढ़िया हो कि आप सबको रिगार्ड देते हैं। ये व्यक्ति सामने वाले बोले ये भाई या बहन सबको रिगार्ड देते हैं, कभी भी इनका रिकॉर्ड है, कभी भी इन्होंने कभी किसी से भी जरा भी ऊंची नीची बात नहीं की है, हमेशा सबसे सम्मान, सबको सम्मान देते, छोटे को भी बड़े को भी, ये रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है। तो ऐसा मैं कैसे करूं, ये है चिंतन। अर्थात चिंता लगाओ कि मुझे करना है। आज बाबा ने मुझे होमवर्क दिया, आज 10 पॉइंट मुरली में थे, 10 पॉइंट में से मुझे इतने पॉइंट तो धारण करने ही है, 10 के 10 पॉइंट मुझे धारण करने, मेरी धारणा में आ जाए, मेरी प्रैक्टिकल मेरी फॉर्म में आ जाए। मुरली खाली सुनने के नहीं है, कर्म में लाने के लिए है ना, ये खाली सुनने के लिए है। आप क्या समझते हैं बताओ, जो समझते हैं मुरली से सुनने के लिए तो हाथ उठाओ, जो समझते हैं मुरली जीवन में लाने के लिए होती है हाथ उठाओ, ऊंचा, बहुत अच्छा। तो मुरली को लाने का तरीका जीवन में हमारे इसलिए इस तरह से आ सकती है, मनन माना पहले रिवाइज करो, चिंतन चिंतन माना चिंता लगाओ, चिंता तो नेगेटिव वर्ड है, मतलब उसको चिंतन में ले जाओ कि मुझे ऐसा बनना है, और फिर मंथन, मंथन माना उसको कैसे बनूं, मुझे बनना है चिंतन, फिर कैसे बनूं ये मंथन। जैसे मीठा बनना है, बाबा कहते हैं बच्चे बाबा मिश्री का पहाड़ है, स्वीट का पहाड़ है, तुम्हें भी क्या बनना है, स्वीट बनना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मनन किया मैंने, कई बार इसको मन में रिवाइज किया, चिंतन किया, मुझे भी स्वीट बनना है, मीठा बनना है। तो मीठे का मतलब क्या है, क्या मीठे का मतलब क्या है, क्या मतलब है मीठे का बताओ, बाबा से पूछता हूं बाबा मीठे का मतलब क्या है, मैं खो जाता हूं, सोचता रहता हूं बाबा मीठे का मतलब क्या है। मीठा माना सबके मक्खनबाजी करता रहूं, सबको भाई जी बहन जी करता रहूं, ये मीठा हो गया। सच्चे का मतलब क्या है, सच्चा सच्चे का क्या मतलब है, सत्य का मतलब क्या है। तो ये जब हम अपने आप से बात करते गहराई में जाते हैं, बाबा से हम तल्लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, मनन करते करते चिंतन करते करते हम बाबा की याद में मगन हो जाते हैं, बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। जब कनेक्शन जुड़ता है तो हम बाबा से पूछते बाबा क्या है आपका, आपने कहा मीठे का, आपकी मुरली तो बहुत गुह्य है, गोपनीय है, रमणीक है, और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं कैसे जीवन में लाऊं ये बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा ना स्वीट का पहाड़ माना क्या हुआ, ये 7 गुण जो है ना आत्मा के, जब आत्मा 7 गुणों में भरपूर होती है तो उसकी चलन उसके कर्म मीठे होते हैं। जैसे देवता 7 गुणों से भरपूर हैं तो देवता मीठे कहलाते हैं, तो 7 प्रधान को क्या कहते हैं, स्वीट मीठा कहते हैं, राइट। तो 7 गुणों से भरपूर बनो तो आप क्या बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे। और बाबा क्या है, 7 गुणों का सागर है, इसलिए वो स्वीट का पहाड़ है। सत्य क्या है, सत्य सत्य माना, सत्य क्या है, मैंने सत्य माना अविनाशी और ना बदलने वाला, तो बाबा सत्य है, राइट। तो इस तरह से अपने आप से कोई मुरली का पॉइंट भी लो, जैसे बाबा ने कल कहा था सच सच्चे बाप से सत्य सच्चे बोलो, सब कुछ सत्य बताओ, है ना। सत्य बाप क्या और सत्य क्या, सत्य क्या बताना है, बाबा से क्या व्यवहार करें हम, अपना हमारा सत्य स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप सत्य है, हमारा आदि स्वरूप सत्य है। तो जब भी कोई बाबा से हम बातचीत करें, बाबा से अपना दिल का हाल बताएं, तो अपने उस अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को स्मृति में लाके, पावन सत्व प्रधान स्वरूप को स्मृति में लाके बाबा से बात करें कि बाबा मेरे से ये गलती हुई, उस स्वरूप से कंपेयर करें कि मैंने आज इस स्वरूप में मैंने ये किया, ये मेरा संगम युगी स्वरूप कहो या इसमें कलयुग असर आ गया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से गलती की और ये मेरा ठीक था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं सतीश गुप्ता बनके या आज से आप भी अपने नाम से अगर अपने आप को वो बनके दिखा कोई भी बाबा से बात करेंगे तो आपको अपनी कोई भी गलती नजर नहीं आएगी। जल्दीबाजी करेंगे, चिंता करेंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ भी किसी को कुछ बोलेंगे, आंख दिखाएंगे, कहेंगे तो जरूरी था ना, इसे बिगड़ जाए काम ही नहीं होगा, नहीं ऐसा होता है। कि तो उस अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप जो हमारा सत्य स्वरूप है उसको जब इमर्ज करके, बुद्धि में इमर्ज करके हम अपनी गलती को तब हम रियलाइज कर पाएंगे, तब बाबा से शेयर कर पाएंगे। यह है सच बोलना। नहीं तो हमारे मन में क्या होता है, मैं बात करता हूं ना, हमारे पास दिल वाले आते हैं और भी भाई बहन आते हैं, पूछते हैं कैसे हम बाबा से चिट्ठी लिखें, हमें तो अपने कुछ गलती नजर नहीं आती। अपने दिल में बाबा को बिठाओ, पहले शिव बाबा को बिठाओ और फिर ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो कि अगर ये सिचुएशन में ब्रह्मा बाबा, इस सिचुएशन ब्रह्मा बाबा क्या करते, जो मैंने किया क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे करते। तब अपना लेटर, सोने के पहले लेटर पोता मिल लेते ना बाबा को, तब लेटर लिखो, बाबा मुझसे ये गलती है हुई, बाबा मुझसे ये गलती है हुई, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा बाप समान बनना। तो अपनी गलती बाबा को बतानी है तो ऐसे बाबा को अपनी गलतियां बताओ, चिट्ठी लिख के। ये है सच्चाई से लिखना, सच्चाई से अपना लेटर, सच्चाई से पोता मेल देना बाबा को। नहीं तो लेटर लोग लिखने बैठते हैं, मुझे आके बताएंगे डॉक्टर साहब हम तो हमने लेटर लेके बैठे, हमें तो कुछ गलती नजर ही नहीं आई सारा दिन में। तो गलती तब नजर आएगी, हमारा जो व्यवहार तब गलत, हम ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये है सच बोलना। अगर हमने सच नहीं बोला बाबा को तो हमारे पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, जो आज गलती मैंने की कल भी वही गलती करेंगे, परसों भी वही गलती, तरसों भी वही गलती करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दिल में सत्यता होगी तो हमारे क्या होगा, हमारे चेहरे से क्या होगी, पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी नजर आएगी और कर्मों में रॉयल्टी माना, जब सातों गुणों में आत्मा भरपूर हो जाएगी तो मेरी आंखों में हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म करेंगे उसमें रॉयल्टी, रॉयल्टी माना दैवी गुण नजर आएंगे। जब आत्मा में सात गुण भरपूर होते हैं तो हमारे कर्मों से दैवी गुण नजर आते हैं। जैसे तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, लाल, नीला और पीला, इन तीनों कलर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम 150 सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। जैसे नीला और पीला मिलाए तो क्या बन जाएगा, हरा। लाल और पीला मिलाए तो कैसा बन जाएगा, गुलाबी, है ना। और फिर लाल और नीला मिलाए तो कैसा बन जाएगा, ब्राउन, है ना। ऐसे फिर तीनों को अलग मिला दें, डिफरेंट डिफरेंट उसकी परसेंटेज चेंज करते जाएं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स बनते जाएं। ऐसे ही जब आत्मा सातों गुणों में भरपूर है और वो कर्म में जब हम आते हैं तो सातों गुण आपस में मिश्रण होकर के हमारे कर्मों में क्या दिखाई देती है, सत्यता दिखाई देगी, हमारे कर्मों में पवित्रता दिखाई देगी, हमारे कर्मों में निर्भयता दिखाई देगी, हमारे अंदर से अंतर्मुखता दिखाई देगी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखता माना एक सेकंड में हम देह से रिटैच होके अशरीर स्थिति में टिक जाएंगे, हम एकांतवासी दिखाई देंगे, अर्थात एक बाप के, एक शिव बाबा के अंत में खोए रहेंगे, ज्ञान सागर के अंत में खोए रहेंगे, पवित्रता के सागर के अंत में, जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना लास्ट में 68-69 में, बाबा के बजाते बाबा बैठे हैं किंतु बाबा कहां खोया पता नहीं है, बाबा एक के अंत में खोया रहता था, ब्रह्मा बाबा एक के अंत में खोए रहते थे, अव्यक्त स्थिति होने से पहले, कर्मात्म स्थिति होने से पहले, कर्मात्म स्थिति की निशानी है कि एक के अंत में हम खोए रहते हैं, ज्ञान सागर के अंत में, पवित्रता के सागर के अंत में, है ना, शांति के सागर के अंत में खोए रहते हैं, रूहानी प्रेम के सागर के अंत में, अतीन्द्रिय सुख के सागर के अंत में, आनंद के सागर के अंत में, एक एक शक्ति के सागर के अंत में खो जाते, एक एक संबंध के अंत में खो जाते, मां के संबंध के अंत में खो गए, है ना, मां के संबंध, बाबा से मां का संबंध की अनुभूति में खोए हुए हैं, बाप के संबंध के अंत में खोए हुए हैं, टीचर के संबंध के अंत में खोए हुए हैं, है ना, सदगुरु के संबंध के में खोए हुए हैं, बंधु, बड़ा भाई के संबंध के में खोए हुए हैं, सखा, दोस्त के संबंध में खोए हुए हैं, साजन के संबंध में खोए हुए हैं, सर्जन के संबंध में खोए हुए हैं, बच्चे के संबंध में खोए हुए हैं। तो ऐसे बाबा के संबंध के अंत में खो जाना, एकांतवासी, उसी का, उसी के आना, उसी में खोए रहना, अशरीरी आत्मा उसके संबंध में खो गई, खोई माना एब्जॉर्ब हो गई, लवलीन हो गई, और फिर एकाग्रता, उसी में एकाग्र हो जाओ जितना समय चाहो उतना समय उसमें एकाग्र रहो। फिर एक नामी ऐसी आत्मा जो उसमें उसके अनुभव को प्राप्त कर लेती है, उस अनुभूति का अनुभवी बन जाती है, ऐसी आत्मा एक नामी बन जाती है। एक नामी माना जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, समस्या तो रोज आती है, जब तक हम जिएंगे, जब तक विनाश होगा, जब तक हम अपनी कर्मास्थिति को प्राप्त करेंगे, समस्याएं रोज आएंगी, नए नए पेपर्स के रूप में आएंगी। जो पेपर कभी नहीं आएंगे वो पेपर आएंगे, किंतु जो ऐसा होगा जिसने जो अंतर्मुखी रहता होगा, जो सत्यता में भरपूर होगा, इस दैवी गुण में जो निर्भयता माना, निर्भय कौन होगा, जिसकी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होगी, अर्थात एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम होगा। कौन सी आंख में सुखधाम बताओ, राइट में लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में, शांतिधाम कौन सी, जो समझते शांतिधाम राइट में होगा हाथ उठाओ, जो समझते लेफ्ट में होगा वो हाथ उठाओ, कोई नहीं उठा रहा, उठाओ ना, शर्माओ नहीं। जो समझते सुखधाम राइट में होगा वो हाथ उठाओ, ना राइट में होगा ना लेफ्ट में होगा, ठीक है। आत्मा से बाबा बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आत्मा से बात। आत्मा की दो आंखें हैं, एक बुद्धि और एक मन। बुद्धि में शांति धाम होगा, बुद्धि में बाबा होगा और बाबा का घर शांति धाम होगा, दिल में, अर्थात दिल में शांति धाम और बाबा होगा, और मन में क्या होगा, सुखधाम, लक्ष्य होगा, है ना, सुखधाम स्वर्ग होगा, मेरा यह स्वरूप, मैं नर से नारायण, नारायण का स्वरूप, या लक्ष्मी का स्वरूप, या राधा का स्वरूप, या श्री कृष्ण का स्वरूप, मुझे ये बनना है, मेरे दिल मन में ये होगा, राइट। तो मन रूपी आंख में, जिसके दिल रूपी आंख में, बुद्धि रूपी आंख में सदा शांति धाम समाया है, सदा बाबा समाया है, और जिसके मन रूपी आंख में सदा ही सुखधाम स्वर्ग समाया है, उसको इस दुनिया के किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा, वो निर्भय होगा, ठीक है। और ऐसी निर्भय आत्मा अंतर्मुखी रहेगी, अंतर्मुखी माना आपस में कनेक्शन है। जो सत्यता में टिकने वाले लोग, जो अपने अनादि आदि सत्यता माने अपने अनादि पावन तत्व प्रधान स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की स्मृति में टिक करके हर संकल्प बोल और कर्म करते हैं, किसी भी बुराई अवगुण व संकल्प को, किसी भी बुराई व अवगुण को संकल्प से भी टच नहीं करते हैं, वो है सत्यता की परिभाषा। बाबा की मुरली में ये परिभाषा दी गई। जो ऐसी सत्यता के अभ्यासी होते हैं, ऐसी सत्यता रूपी दैविक गुण को भर लेते हैं अपने अंदर, कर्मों में दिखाई देता है उनके, ऐसी आत्माएं निर्भय होती है। निर्भय माना उनकी बुद्धि में शांति धाम और मन में सुख धाम समाया होता है, और ऐसी आत्माएं अंतर्मुखी रहती है। अंतर्मुखी माना वो एक सेकंड में इस देह से रिटायर छोड़ के अशरीर स्थिति को अनुभव कर सकती है। जो अंतर्मुखी है वो एकांतवासी रहते हैं। एकांतवासी माना एक के अंत में खोए रहते हैं, शिव बाबा के अंत में खोए रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट संबंधों से, डिफरेंट डिफरेंट गुणों से, शक्तियों से में खोए रहते हैं। और ऐसी आत्मा एकाग्र, उनके अंदर मन बुद्धि की एकाग्रता होती है। संडे की मुरली, जो कल की मुरली थी, परसों की मुरली थी, याद है आपको, अगर हम संकल्पों की सिद्धि चाहते हैं, हमारे सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं, कहीं भी बैठे हमारे संकल्पों टच, लोगों को टच हो जाए ना, जो बाबा ने बताया सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, शुभ भावना शुभकामना का खजाना। तो ये जो खजाना है ये हमारा ऐसा काम करेगा बढ़िया, है ना, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, इससे हमारी मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। तो ये मन बुद्धि की एकाग्रता, तब एकाग्रता आएगी, तब मन बुद्धि एक में लगा रहेगा, जब चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे हम बाबा की याद में खो सकते हैं। नीचे भूकंप आ गया बहुत जोर से, सब बिल्डिंगें टूट गई, आप मन बुद्धि से बाबा की याद में खो जाओ, एक मन बुद्धि का बाबा की याद में खो जाओ। तो बाबा ने क्या कहा था याद है आपको, कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था, दो मकान छोड़ के विनाश हो रहा होगा और आपको क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके मकान को भी कुछ नहीं होगा। और आपका मकान एसलम बन जाएगा, आपका सेंटर एसलम बन जाएगा, क्योंकि आपके जहां तक आपकी रूहानियत के वाइब्रेशन, जहां तक आपका वायुमंडल है, वहां तक उस स्थान में कोई चीज आंच नहीं आएगी। जैसे हमारे भुज के मकान में हुआ, भुज का सेंटर था ना हमारा, वहां पर हुआ। चेन्नई में जब साइक्लोन सुनामी आई तब ऐसा हुआ। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं अपने यज्ञ के सेंटर, जहां जहां तकलीफ प्रॉब्लम्स हुई है, आसपास दो तीन मकान छोड़ के विनाश हो गया है, मकान टूट गया है, गट्टे नीचे चला गया, मकान पूरा के बना चला गया और हमारा सेंटर यूं का यूं खड़ा है, क्योंकि वहां पर बाबा के वाइब्रेशन योग की शक्ति है, वाइब्रेशन है योग के। तो ऐसी मन की एकाग्रता अपने अंदर इकट्ठी हो तो एसलम बन जाएंगे। तब क्या होगा, आपको पता है भुजवाला जो हमारा सेंटर था, भूकंप आया सब मकान गिर गए, झंडा भी नहीं हमारा हिला, हमारे मकान का झंडा भी नहीं हिला। और बाहर एक नल का एक बर्मा था जो सालों से बंद पड़ा था, क्योंकि उसमें खारा पानी आता था। तो जब वहां पर भूकंप आया, पानी कमी पड़ गई, तो लोगों ने क्या किया, उस बर्मे में पानी डाल के थोड़ा सा उसको चालू किया, और चालू करने पर वो बर्मे से मीठा पानी आना शुरू हो गया है ना। तो मीठा पानी मतलब जो खारा पानी सालों से खारा पानी दे रहा था, मीठा पानी, उस बर्मे से कितनी सेवा हुई, उस पानी से कितने आसपास के लोगों की सेवा हुई, आर्मी ने भी वहां से पानी लिया। तो ये बाबा का अंदर धरती में ऐसा कुछ प्लेट थी ना, वो प्लेट क्रैक हो गई और ऊपर से नीचे से मीठे पानी का झरना ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये वंडरफुल बात लास्ट में होने वाली है ना। तो ये जो है अपनी स्थिति एकाग्रता, और फिर ऐसा व्यक्ति एक नामी, जब भी कोई स्थिति आएगी उसको सिर्फ एक ही याद आएगा। डॉक्टर अगर दर्द हो रहा है हार्ट में, डॉक्टर याद नहीं आएगा, शिव बाबा दिलाराम याद आएगा। कमर में दर्द हो गया, यहां दर्द हो गया, कहीं दर्द हो गया, बाबा याद आएगा। बाबा भले फिर टच करे बुद्धि में कि बच्चे उस डॉक्टर के पास जाओ, किंतु उसको डॉक्टर याद नहीं आएगा, उसको बाबा याद। इसे कहते हैं एक नामी। सिर्फ कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी समस्या हो, तन के साथ परिवार में या जहां भी हम काम करते हैं, वहां पे कोई समस्या आई, कोई परिस्थिति आई, बाबा याद आए। एक नामी, व्यर्थ से एक नामी, व्यर्थ संकल्प आएगा भी नहीं और एक रस स्थिति बन जाएगी। एक रस, जो एक ऐसी एक रस स्थिति वाला होगा उसको अंदर सरलता आएगी, वो इजी नेचर वाला व्यक्ति बन जाएगा। सरल वही रह सकता है जिसकी स्थिति एक रस हो, नहीं तो सरल नहीं। दिखावे के लिए सरल, अभी सरल होगा थोड़ी देर मुश्किल हो जाएगा। जिसकी स्थिति एक रस, एक नामी, व्यर्थ से एक नामी, एक रस स्थिति वाला ही सरलता का अनुभव कर सकता है। ये मैं रॉयल्टी की बातें कर रहा हूं, ठीक है। ये कहां से आएगी, जिस दिल में सत्यता होगी तो रॉयल्टी आती जाएगी। कर्मों में, ये कर्मों में रॉयल्टी है। विनाश हो रहा है, साक्षियों के प्रकृतिपति होके बैठे हैं, माया जीत कर्मेंद्र जीत, माया जीत प्रकृति जीत, विकर्मा जीत होके बैठे हैं, कर्मात स्थिति, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। ये है रॉयल्टी। रॉयल आदमी हिलते नहीं है, है ना, कुछ हो जाए तो भागते नहीं है, घबराते नहीं कभी रॉयल व्यक्ति। ये हमें बनना है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां बहुत भयानक होंगी, लोग डर के भागेंगे, हमें भागना नहीं है। हमें अपने अचल डोल से एक स्थिति में स्थित होकर सबको सकाश देना है, सबका कल्याण करना है। तो ये दिल में सत्यता, तो इसके बाद सरलता, सरलता पे नम्रता आएगी, नम्रता ना, हम्बलनेस आएगी। दादियों में कितनी नम्रता है, कितनी सरल है दादियां। तो सरलता नम्रता आएगी, उदारता आएगी। उदारता माना किसी गलती देखे उस पर दिल नहीं जाएगा, ये गलती ऐसी, ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे नहीं। जैसे बाबा कैसा है, बड़ी दिल वाला है, बच्चों की गलतियों को देख के उस पर उसको माइंड नहीं करता है, शक्ति भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। ऐसे कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी होगा रहा होगा यज्ञ में या बाहर, नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव दिखाई देगा, हमें सिर्फ अच्छा दिखाई देगा, हमें कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा। उदारता, मधुरता, फिर मधुरता आएगी, हर बोल मीठा होगा सबके साथ, चाहे किसी ने मुझे कुछ भी किया हो, कुछ तंग भी किया हो, कुछ मेरा बोल मीठा होगा। मीठा माना सातों गुणों से भरपूर होगा, सातों गुणों से भरपूर होगा। मैंने कहा ना मनन चिंतन मंथन, मंथन जब किया तो सिमरण, सिमरण माना अब जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। सिमरण माना ये नहीं कि सिमरण उससे मैं करूं मीठा, मीठा माना सत्व प्रधान, मीठा माना सत्व प्रधान, मीठा माना सत्व प्रधान, ये नहीं है ना। मीठा माना अब जो मक्खन निकला मंथन से उसको कार्य में लगाना। अब मुझे सत्व प्रधान बन के, सत्व प्रधान बाबा की याद में टिक्के में दूसरों से बातचीत करूं तो मेरा क्या होगा, व्यवहार कैसा होगा, मीठा होगा। मेरे कर्म मीठे होंगे, दूसरों को अच्छे लगेंगे, राइट। तो मीठा मना कार्य, सिमरन माना कार्य में लगाना, कह रहे सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब जितना कार्य में लगाओ उतना सुख पाओ। जब हमने कार्य में लगाया तो नया संस्कार बन जाएगा, नई रिकॉर्डिंग होगी स्मृति स्वरूप, तो ऐसे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो मुरली के ये 5-6 पॉइंट है, मनन चिंतन मंथन सिमरन और स्मृति स्वरूप। तो ये जो मुरली सुबह हमें मिली उसको हम अपने दिल में, है ना, मैं कहता हूं हमेशा एक तो फिजिकल दिल तो ये है ना, और एक दिल आत्मा का दिल यहां है, तो इस दिल में बाबा कब बैठेगा, जब हम बाबा की मुरली को क्या करेंगे, सुबह तो बहुत प्यार सुनेंगे, और फिर मैं तो कहता हूं कि मुरली के पॉइंट्स लिख करके, जब मुरली हम करते हैं ना, मुरली के पॉइंट लिख लें, और उसको कहां रख दें, हम कहां रखना चाहिए, इस दिल के पास रख देना चाहिए, है ना, जैसे ये दिल के पास है ना, जैसे मेरी मुरली है ना, मैं हमेशा दिल के पास रखता हूं, तो दिल के पास रखेंगे ना, ये आज की मुरली है ना, तो दिल के पास रखो। ये बाबा का लव लेटर भी है, क्या है ये, बाबा का प्रेम पत्र है ना, हम आत्माओं के लिए, साजन का सजनियों के लिए प्रेम पत्र है, तो दिल के पास रखते हैं ना। और प्रेम पत्र कैसे पढ़ते हैं पता है किसी को, कैसे पढ़ते हैं बताओ, है पहले आसपास देखते हैं कोई है तो नहीं, है ना, इधर उधर देखते हैं, फिर चुपचाप जैसे निकालते हैं, फिर यूं छुपा के यूं देखते हैं, है ना, फिर मुस्कुराते हैं, देखते आसपास सामने कोई आ रहा है, एकदम जेब में लगा लेते हैं, है ना, नहीं? और फिर जब तक वो आदमी सामने रहता है, कोई व्यक्ति सामने रहता है, उसी बारे सोच, भले वो सामने व्यक्ति है, उसी के बारे सोचते रहते, मेरे साजन ने मेरे लिए कहा, उसी को अनुभव करते रहते अंदर अंदर, है ना। और फिर जैसे देखा अभी ये आदमी गया यहां से, फिर जेब में हाथ गया, वापस निकाला, और फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, है ना, आप अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है ना। तो ऐसे बाबा के जो प्रेम पत्र है उसको दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, 100 बार तो पढ़ना चाहिए ना, कम से कम एक एक लाइन तो बार बार पढ़ो ना, एक एक लाइन पढ़ो, वरदान पढ़ो, कभी स्लोगन पढ़ो, कभी मीठे बच्चे पढ़ो, कभी और लाइन पढ़ो, है ना। 10 पॉइंट मुरली में रोज होते हैं, 10 से 12 पॉइंट रोज होते हैं, तो 10 से 12 पॉइंट है तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसका मनन करो, फिर चिंतन करो, फिर मंथन करो, फिर सिमरन करो, तो इससे हमारे दिल में सत्यता आती जाएगी। सत्यता ऐसे आएगी जितना करेंगे, राजयोग क्या है, राजयोग कुछ और नहीं है, राजयोग सिर्फ क्या है, इस मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन मंथन सिमरण करना ही क्या है, योग है, बाबा की याद है। इसको जितना हम गहराई से अनुभव करते जाएं, इस मुरली को जीना ही राजयोग है, यही बाबा की याद है, ये बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली को इसको जीवन में ले आना, यही राजयोग है, यही बाबा की याद है। एक एक लाइन बाबा की मेरे दिल में छप जाए और मेरे कर्मों में आ जाए तो यही रॉयल्टी है। तो मैंने बताया उदारता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी, फिर धैर्यता आ जाएगी, पेशेंस आ जाएगी। कुछ भी होता है, हर काम को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके, त्रिनेत्री बन के त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके फिर हम उसको करेंगे, धैर्यता, कभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, गंभीरता आ जाएगी, सीरियसनेस। एक बार बाबा ने कहा था, अगर आपको स्थाई याद करनी है तो 3 चीज चाहिए, शायद वो मुरली है 12/1/2015 की, प्रश्न में था, अगर आपको स्थाई याद का अनुभव, बाप के साथ का निरंतर अनुभव करना तो क्या चाहिए, तो उसके लिए बाबा ने कहा था 3 चीज चाहिए, एक तो चाहिए धैर्यता, दूसरा गंभीरता, और तीसरा पढ़ाई पर अटेंशन। 3 चीज जब हमारे अंदर होगी तो हमारा योग परफेक्ट हो सकता है, तब हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। तो धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए, और फिर रमणीकता, ऐसा व्यक्ति रमणीक हो जाएगा, और फिर ऐसा व्यक्ति में सहनशीलता आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा वो सहनशील करेगा, सहन करके समा भी लेगा, सहनशील माना सहन करके ठंडा रहेगा। काफी लोग क्या होते हैं, सहन करके गर्म हो जाते हैं, स्पेशली हमारी माताएं सहन करके गर्म होती रहती, फिर से सिर में दर्द होने लगता है, सहन करके समा ले, जैसे सागर में नदी में एक पत्थर फेंका, पता नहीं लगता कहां गया, सहन भी किया और समा लिया। ऐसे ही हम लोग, कोई कुछ कह दे, कुछ गाली दे दे, कुछ तंग करे, कुछ भी व्यवहार गलत करे हमें, हम उसको सहन करके समा लें, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए, और फिर दृढ़ता आ जाएगी। दृढ़ता माना, मुझे बाबा के साथ का अनुभव करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे ये काम, कुछ भी धरती इधर से उधर हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे ये काम करना है ना, दृढ़ता आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति फिर संतुष्ट रहेगा। मैं आपको बताऊं कैसे हमारे दैवी गुण हमारे सीरियल वाइज आते जाते, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और ऐसा व्यक्ति सदा मुस्कुराता रहेगा, हर्षित मुख रहेगा, और ऐसा व्यक्ति सम्मान रहेगा, सबको सम्मान देगा, जो आज का वरदान था। ऐसा व्यक्ति सदा निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी उसकी भरपूर, निर्मल वाणी से भरपूर होगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बाबा का बच्चा सदा आज्ञाकारी होगा, आज्ञाकारी माना सदा पवित्र और निरंतर योगी होगा। ऐसा बाबा का बच्चा सदा वफादार होगा, अर्थात उसके दिल में सिर्फ बाबा के सिवा कोई भी नहीं होगा। ऐसा बाबा का बच्चा सदा ईमानदार होगा, अर्थात उसका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर श्वास भी बाबा की श्रीमत के आधार पे होगा, ना मनमत पे होगा ना परमत पे होगा। एक एक पैसा स्थूल धन भी बाबा की श्रीमत पे खर्च करेगा, अपनी मनमत पे खर्च नहीं करेगा, परमत पे खर्च नहीं करेगा। और ऐसा बच्चा बाबा का फरमान बरदार होगा। फरमान बरदार माना बाबा का फरमान क्या है, बच्चे देह के सब संबंध संपर्क, देह के स्वभाव, ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह के संस्कार आदतें, आलस करना, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये है देह के संस्कार। और देह के पदार्थ को बुद्धि से त्याग देता है, उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं देता। ऐसा बच्चा सब चारों चीजों को त्याग करके और अपने को आत्मा निश्चय कर निरंतर बाप की याद में खोया रहता है। और ऐसा बच्चा क्या करता है, विक्रम विनाश करके और सतो प्रधान बन के तब बाबा से हमारा सही मिलन हो सकता है, नहीं तो बाबा से सही मिलन नहीं होता हमारा। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो अनुभव नहीं है, वो हमने बनाया, हमने विजुलाइज करके बनाया सूक्ष्म वतन, वो अनुभव रियल अनुभव नहीं है। रियल सूक्ष्म वतन क्या है, रियल परमधाम क्या है, रियल बाबा क्या है, उसकी रियल अनुभव होना, तब हम बाबा से समान बन के बाबा से मिलन बना सकेंगे, तब बाबा हमारी बात सुनेगा, तब बाबा हमें जवाब देगा। क्या कहते हैं, मैं बाबा को बात करता हूं, बाबा मेरी बात सुनता ही नहीं, बाबा जवाब ही नहीं देता, तो बाबा तब हमारी बातों का जवाब देगा, राइट। तो ये दैवी गुणों से, अर्थात ये है रॉयल्टी। तो दिल में जितनी सत्यता बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारे चेहरे से अर्थात हमारे मन में क्या होती जाएगी, पर्सनैलिटी माना सातों गुण भरपूर होने लगेंगे, दिखाई देंगे, और हमारे कर्मों में रॉयल्टी आती जाएगी। ठीक बात है, सभी ऐसे करेंगे। और हमारे अब लास्ट में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको इसमें, अब ये हमारे पास आ जाए इसके लिए बाबा ने कुछ नियम और परहेज बताए, नियम और मर्यादाएं बताई। सच्चे ब्राह्मणों की निशानी है वो, सच्चा ब्राह्मण कभी भी वो मिस नहीं कर सकता है नियम और परहेज या मर्यादाएं। पहला नियम है ब्राह्मणों का, वो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं कर सकते, पावरफुल अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला ही वो समय है जिस समय हम जब उठते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 3 या 4 होती है, 2 या 3 होती है, कई बार तो अच्छी नींद आती है, और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है। अगर मुझे बाबा से कनेक्शन चाहिए तो मेरी फ्रीक्वेंसी 2 होनी चाहिए, 0, 1, 2 है ना, तभी तो कनेक्शन लगेगा। 2 माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस तीसरा कुछ संकल्प नहीं होना चाहिए। तो हमारे जब उठते हैं 2-3 संकल्प ही होते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा को किया, बैठ गए, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ गए और बाबा को एकदम कनेक्शन लगा लेते हैं और हमारा कनेक्शन लग जाता है और करंट आने लगती है। तो ये पावरफुल, इसलिए अमृत वेला बाबा कहता है कितना भी दिन में योग कर लो, अमृत वेला जैसा योग हो नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं अमृत वेला नींद आती है, नींद आती है, इसका मतलब रात को ठीक ढंग से सोए नहीं हो। रात को 9:30 बजे बाबा को लेटर लिखो, पहले सच्चाई से शिव दिल में शिव बाबा को बिठाओ, ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, लिखो आज क्या क्या गलतियां हुई, साइन करके बाबा को भेज दो 000 पे, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आसाज में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हॉटलाइन फैक्स नंबर है बाबा का। लेटर बाबा के पास पहुंच गया, लेटर जाने के बाद फिर चार्ट भरो याद का, फिर मुरली पूरी पढ़ो। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, बाबा की मुरली पूरी पढ़ के पढ़ो ना सोने के पहले, तो मन प्लेन हो जाता है। मुरली दिन 10 बार पढ़ी होती है वैसे, तो हम रात को पढ़ते 10 मिनट ही लगते हैं मुरली पढ़ने में, और अंडरलाइन की होती है तो हमें और जल्दी फास्ट हो जाती है, तो मन एकदम प्लेन हो जाता है ना। और प्लेन होने के बाद 3 मिनट बाबा को याद कर, बाबा की गोद में सो जाओ। सोना कहाँ होता है? हम लोग अपने बेड पे सोते हैं ना, बेड तो गैरेज होती है, बेड जो होती है ना, जैसे बेड पे सोते हो, ये बॉडी हमारी कार है, ये कार को उस गैरेज में पार्क करो। हमारा बेडरूम कहाँ है बोलो, कहाँ पर है? सूक्ष्म वतन हमारा बेडरूम है और बाबा की गोद हमारा बेड है, ठीक है। अगर आप बाबा के बेड पे, बाबा की गोद में सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और एक्यूरेट 3:30 बजे आंख खुलेगी और परफेक्ट योग सुबह सुबह होगा, ठीक है। तो अमृत वेला पावरफुल करो सच्चे ब्राह्मण के। दूसरा मुरली, नहा धोकर तैयार होके बाबा की मुरली में जाओ और मुरली बाबा की गोद में बैठ के सुनो। सेंटर पे जाओ, सेंटर पे जाके मुरली सुनने की है, घर में बैठ के नहीं, टीवी पर नहीं, पीस ऑफ माइंड पर नहीं, सेंटर पे जाओ। अगर 8-10 किलोमीटर दूर सेंटर तो भी जाना चाहिए, ठीक है। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि वो 1-1.5 घंटा लगा ना, आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, एफिशिएंट बीतेगा। अगर मुरली मिस कर दोगे, घर में बैठ के मुरली सुनोगे तो अंदर नहीं जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना, मुरली जरूर सेंटर पे जाओ, सच्चा बच्चा जरूर मुरली पे जाएगा और मुरली में फिर उसके सारा दिन उसको फिर क्या करो, अटेंशन रखो। अटेंशन में 4 बातें आती है, मनन चिंतन मंथन सिमरन, और सोने के पहले वेंटिलेशन। वेंटिलेशन माना लेटर लिखो, चार्ट भरो, मुरली पढ़ो और याद करके सोचो। ये 4 बातें सच्चे ब्राह्मणों की निशानी है। और परहेज क्या है बाबा के बच्चों के? पवित्रता। जो बाबा का बच्चा सच्चा होगा, पवित्रता, जितनी गहराई मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्र रहेगा, इवन ब्राह्मणों के लिए लगाव झुकाव प्रभाव भी अपवित्रता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति लगाव रखना, कोई बड़ा छोटा किसी के प्रति लगाव हो जाए, ये व्यक्ति भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहन जी बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छी है, ये भी गलत है। एक बाबा अच्छा है, बाकी सब अच्छे हैं, किंतु बाबा ही मेरा सबसे अच्छा है। लगाव हो तो बाबा से हो, किसी देहधारी से ना हो। झुकाव सिर्फ एक बाबा के प्रति झुकाव हो। टकराव किसी भी देहधारी से टकराव ना हो। और प्रभाव किसी भी देहधारी के प्रभाव में मत आओ। एक बाबा के प्रभाव में आओ, किसी भी देहधारी कितना भी अच्छा हो उसके प्रभाव में मत आओ। अगर किसी के प्रभाव में आ गई तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी ये पवित्रता गहराई है। और तीसरी बात, पवित्रता की गहराई की बात, जरा भी क्या क्यों कैसे नहीं करना है। ड्रामा में जो भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, यज्ञ में यज्ञ के बाहर, वो एक्यूरेट चल रहा है, ड्रामानुसार चल रहा है, राइट। उसमें ये करना है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा भी करते हैं क्या, ये भी अपवित्रता है, राइट। तो जितनी पवित्रता की गहराई बढ़ेगी उतना हमारा बाबा से अमृत वेला अच्छा होगा, उतना मुरली अंदर जाके रिकॉर्ड होगी, उतना फिर मनन चिंतन मंथन सिमरन अच्छा होगा, उतना सच्चाई से फिर बाबा का लेटर लिख सकेंगे हम, उतना सच्चाई से चार्ट भर सकेंगे, उतना सच्चाई से दिल समय होगा बाबा की मुरली पढ़ने का, उतना सच्चाई से बाबा को याद करके बाबा की गोद में सो सकेंगे। तो पहली बात है पवित्रता, राइट। दूसरा है शुद्ध सात्विक भोजन। सात्विक भोजन खाओ, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। रासिक भोजन खा के कोई कहे सात्विक, माने सात्विक गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी अंकुरित दलिया रोटी सब्जी चावल है ना दूध, ये है सात्विक भोजन। रासिक भोजन है ना पराठा पकौड़ा समोसा मिठाई खाना, ये आलस पैदा करता है। कोई कहे पराठा खा के पकौड़ा खा के फिर कहे मैं बाबा को याद करूं, नहीं होगा, नींद आएगी। खाते हैं ना, अच्छे लगते ना पराठा समोसा, अच्छा लगता है ना समोसा खा के हम बाबा को याद कर सकते हैं? इधर एसिड बन रहा होगा, इधर गैस बन रही होगी, तो ऊपर जाओ बाबा को, ये शरीर नीचे खींचेगा, आप ऊपर को जाने की कोशिश करो, है ना। रासिक भोजन खा के बाबा की याद नहीं हो सकती। ऐसे तामसिक, चाय कॉफी पीना, लहसुन प्याज खाना, ये बाजार के चीजें पैक चीजें आती हैं वो खाना, है ना, मैदा की बनी चीजें खाना, ये उत्तेजित करने वाली चीजें खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, है ना, ये सब क्या है? तामसिक चीजें, इनसे ना खाओ। तामसिक चीजें खा के उत्तेजना पैदा होगी, है ना, ये कभी ना खाओ, ठीक है। तो सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक बाबा की, शुद्ध सात्विक, फिर सत्संग, एक बाबा और मुरली के अलावा कोई चीज का संग मत करो। समाचार पूछना, बाबा से पूछो, बाबा दुनिया का क्या हाल है, पता बाबा बता देगा, है ना। और फिर दैवी गुणों की धारणा, ये 4 परहेज हैं। जो ये 4 परहेज करेगा उसका अच्छा अमृत वेला होगा, उसकी अच्छी मुरली होगी, उसका सारा दिन अटेंशन रहेगा, वो सारा वेंटिलेशन कर पाएगा। तो इस तरह जितनी जितनी दिल में सत्यता बढ़ती जाएगी, उतनी हमारे चेहरे में पर्सनैलिटी अर्थात सात्व गुण बढ़ते जाएंगे और फिर उतने हमारे कर्मों से रॉयल्टी नजर आएगी। ओम शांति।
पिता वो बाहों के झूलों में रहा मुझे जैसे।